ये वीर रायचंद नौकर तो बन गया है, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। देख किस तरह मेरी हवा हवाई को खाते हुए ताड़ रहा है। अब आगे ये जरूर उसे नजर लगाएगा। एक तो वैसे ही मेरी हवा हवाई को कुछ समझ नहीं आता, और इसको क्या जरूरत थी इस लुच्चे लफंगे से कुछ मंगवाकर खाने की। नानी माँ ने सबको समझाया भी था कि इन दोनों के हाथों को कुछ भी खाने से पहले थोड़ा सा टेस्ट करवा लेना है, लेकिन देखो चाट पकौड़ी देखते ही ये किस तरह टूट पड़ी। आहा, वीर को कुछ भी कह सकता था, क्योंकि वीर अब अरमान सिंघानिया की नज़रों में घर का एक ऐसा नौकर बन चुका था जिसे सभी के लिए काम करना था। फिलहाल अब रौनक को इस तरह से चाट पकौड़ियाँ खाते हुए देखकर रश्मि का भी दिल मचलने लगा। वो तुरंत उसके पास आई और अगले ही पल चहकती हुई बोली, रौनक मुझे भी थोड़ा सा चाट पकौड़ी देना, मेरा भी खाने का दिल कर रहा है। आज पहली बार रश्मि का कुछ अलग खाने को दिल कर रहा था, वरना वो कुछ भी खाती थी तो उसे उल्टी लगती थी, उसके पेट में कुछ नहीं पचता था। अब रश्मि की बात सुनकर रौनक ने जल्दी से थाली रश्मि के आगे कर दी। वहीं वंशिका और राधिका भी ललचाई नजरों से चाट पकौड़ी और गोलगप्पे को देखने लगीं, और वो दोनों भी अब खुद को रोक नहीं पाईं और तुरंत उन दोनों के साथ शामिल होते हुए चुलबुलेपन से बोली, ये तो मेरा भी फेवरेट है, मुझे भी खाना है। अब वो चारों मिलकर जुलकर एक साथ चाट पकौड़ियाँ खाने लगीं। वहीं उन चारों को इस तरह से खाते देखकर वीर को तो ऐसा लगने लगा मानो जैसे उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत और हसीन नज़ारा देख लिया हो। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ, वो भी एक से बढ़कर एक, वीर के सामने बैठकर उसके लाए हुए गोलगप्पे और चाट पकौड़ी मज़े से खा रही थीं, तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। वीर को उस वक्त बिल्कुल इस तरह की फीलिंग आ रही थी मानो जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए कुछ लेकर आया हो और उसकी गर्लफ्रेंड्स उसी का लाया हुआ खाना चटकारे लेकर मज़े से खा रही हों। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वीर अचानक अंदर ही अंदर शर्मा उठा और उसने अपना सीधा हाथ उठाकर अपने बालों के ठीक पीछे घुमा दिया। फिर वो ललचाई नजरों से सभी लड़कियों के चलते हुए होठों को देखने लगा। वहीं चारों के चारों लड़के जलती हुई नजरों से वीर को ही घूर रहे थे। वीर तो अलग ही दुनिया में खोए हुए उनकी बीवियों को ही ताड़ रहा था और वो चारों सुलगती हुई नजरों से वीर को ही एकटक देख रहे थे। लेकिन वीर को किसी की भी नज़रों की कोई परवाह नहीं थी, उसका ध्यान तो बस रौनक और बाकी सबको देखने में ही था। अगले ही पल ध्रुव जल्दी से उठ खड़ा हुआ और वीर की ओर देखकर कठोरता से बोला, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गुंडा लफंगा इस तरह से मेरी वंशिका को ताड़ नहीं सकता। उसका साथ देने के लिए सुमित और आकाश भी उठ खड़े हुए, कहीं ना कहीं वो दोनों भी वीर को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन आहान ने तुरंत ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और तंज भरे लहजे में मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? जब मैंने तुझे बोला था कि ये वीर का बच्चा मेरी हवा हवाई को ताड़ रहा है, तब तो तूने कुछ रिएक्ट नहीं किया था ना, मुझे कुछ बोलने दिया। और अब जैसे ही वीर वंशिका, साथ ही साथ राधिका भाभी और रश्मि दीदी को देखने लगा तो तुम लोगों को जेलसी फील होने लगी। फिलहाल अभी मुझे कुछ सोचने दो, मैं इस वीर का कुछ ना कुछ करता हूँ। तभी अचानक आहान के दिमाग में एक आइडिया आया और वो सीधा नानी माँ के पास किचन में चला गया। किचन में जाकर उसने नानी माँ को देखा जो इस वक्त रौनक की पसंद का खाना बना रही थीं। आहान ने वहां जाकर नानी माँ को काम करने से रोका और उनके कानों में धीरे से कुछ फुसफुसाने लगा। साथ ही साथ उसने नानी माँ को ये भी बता दिया कि वीर किस तरह सबकी बीवियों को ताड़ रहा है और ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। आहान के ये मुँह से शब्द सुनकर नानी माँ का डिटेक्टिव मोड तुरंत ऑन हो चुका और वो किचन में लगातार यहाँ वहाँ चहलकदमी करते हुए वो कुछ सोचने लगी। और अचानक तोप नानी माँ के दिमाग की बत्ती जल उठी और वो तुरंत आहान के कानों में कुछ फुसुर करने लगी। अब जैसे ही आहान ने नानी माँ के शब्द सुने, वैसे ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई और उसने खुशी के मारे नानी माँ को गले से लगाकर उनके माथे को चूम लिया और एक्साइटेड होकर चिल्लाया, वाह मेरी तोप नानी माँ, सच में यू आर रियली ग्रेट, आप कितनी ग्रेट हैं, आपने क्या आइडिया दिया है भाई साहब, सच में नानी माँ आप कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये बोलकर उसने एक बार फिर नानी माँ के माथे को चूम लिया। नानी माँ अपने आप में ही शर्मा सी गई, वो अपनी साड़ी का पल्लू मुँह पर रखते हुए धीरे से बोली, अरे बिटवा तुम भी ना, जब देखो हमारी तारीफ करते रहते हो, अरे हम इतने भी अच्छे नहीं हैं जितनी तुम तारीफ करते हो, फिलहाल जैसा हमने कहा है बस तुम वैसे ही करो, फिर देखते जाओ कितना मज़ा आएगा। उनकी बात सुनते ही आहान एकदम से बोला, ठीक है नानी माँ, आप तैयारी कीजिए क्योंकि मैं आने वाले उस एंटरटेनमेंट को कहीं ना कहीं अपने फ़ोन के कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए जल्दी ही किचन से बाहर आ गया और बाकी सबके साथ बैठ गया। अब वीर, जो थोड़ी सी दूरी पर खड़ा था, एक बार फिर से लड़कियों के सामने हाथ बांधकर सबको टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन इस बार वीर की हरकतों को देखकर आहान को कोई जलन नहीं हुई। वहीं ध्रुव, आकाश और सुमित तीनों अविश्वास भरी नजरों से आहान को देखने लगे। ध्रुव ने उसे कोहनी मारते हुए तंज कसा, ये क्या कर रहा है तू, अभी थोड़ी देर पहले तो तू बड़ा चल भून रहा था और कह रहा था कि तू आज इस वीर का खून कर देगा और अब यहाँ आकर इतने नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, इस सिचुएशन में तू इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है यार। अब जैसे ही ध्रुव ने ये पूछा, अगले ही पल आहान ने तुरंत अपनी शर्ट का कॉलर घुमाते हुए स्टाइल में कहा, अरे मैं भी आहान द ग्रेट सिंघानिया हूँ,
तुम देखना मेरा कमाल, ऐसा जुगाड़ बिठा कर आया हूँ कि तुम सब लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगते फिरोगे। आहान की बात सुनकर ध्रुव का मुंह बन गया। उसने इरिटेट होकर पूछा, ऐसे भी क्या महान काम कर दिया तूने? बोल, जवाब दे। तब आहान एक पल के लिए उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाया, नानी माँ। अब चारों लड़कियां, साथ ही साथ वीर, आकाश, सुमित और ध्रुव सब कंफ्यूजन से आहान की ओर देखने लगे कि ये बेवकूफ इतनी जोर से नानी माँ को क्यों पुकार रहा है। आखिर इस तरह से आवाज लगाने का क्या मतलब हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि अपने कमरे में किंग चेयर पर बैठा हुआ था और अपने सामने दादाजी को ही घूर कर देख रहा था। एक्चुअली में अरमान ने खुद दादाजी को कमरे में बुलाया था, क्योंकि जिस तरह उसने थोड़ी देर पहले रौनक, नानी माँ और बाकी सबको झिड़की दिया था, तो ये बात दादाजी को पता चल गई थी। इसलिए दादाजी अरमान को थोड़ा सा समझाना चाहते थे। कमरे में आते ही उन्होंने अरमान को नाराजगी से देखा और सख्त अंदाज में बोले, अरमान बेटा, तू जानता है कि तेरा इस तरह से उन लड़कियों से तकरार करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई है। कितने ही सालों तक उन्होंने मेरे बेटे को अपना बेटा बनाकर रखा है। अब मैं इस तरह से उन्हें यहाँ से उनके एहसान के बदले नहीं निकाल सकता। वो लोग गरीब हैं बेटा, और तू उनके साथ इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल नहीं कर सकता। अरमान इरिटेट होते हुए बोला, आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे औरतों के नाम से ही चिढ़ है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरे आसपास कोई भी औरत भटके। अरमान की इरिटेट आवाज सुनकर दादाजी ने मन ही मन माथा पीट लिया और वो गुस्से में बोले, तेरी हरकतें तो छोटे और जिद्दी बच्चों जैसी हैं। कोई तुझे देखकर कह नहीं सकता कि तू एक बच्चे का बाप है।
अब जैसे ही दादाजी ने फ्लो फ्लो में ये कहा, अरमान की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और दादाजी की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। दादाजी को तुरंत एहसास हो गया कि उन्होंने बातों ही बातों में क्या कह दिया, तो दादाजी तुरंत बात को संभालते हुए जल्दी से बोले, मेरा मतलब ये है कि तू एक बच्चे से भी कहीं ज्यादा जिद कर रहा है। इस तरह से भला कौन जिद करता है? तू थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो जाता? अरे, एक घर को घर बनाने के लिए औरतों का होना बहुत जरूरी है। तू समझ रहा है ना मेरी बात? और अब मेरी ध्यान से सुन, हमने कह दिया तो कह दिया। तू अब बहन जी और उनकी बेटियों के साथ किसी भी तरह का सख्त व्यवहार नहीं करेगा। अगर तूने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरमान। दादाजी ने हमेशा की तरह अरमान के सामने अपना पॉइंट क्लियर किया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अरमान अब अपने पहले वाले रूप में आ चुका है और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो सिर्फ उसके दादाजी हैं। भले ही अरमान के पिता उसकी आंखों के सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके दादाजी की जगह उसके दिल में कोई नहीं ले सकता। इतना बोलकर दादाजी थोड़ी देर शांत हो गए, मगर उन्होंने चुपके से नोटिस कर लिया था कि अरमान का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और अब वो ज़रूर उन्हें कुछ खरी खोटी सुनाने वाला है। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो, दादाजी ने अपनी बेस्ट ट्रिक लगा दी। बीमार होने की एक्टिंग करने के लिए जोरों से खांसने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर अरमान फौरन उठ खड़ा हुआ और पास रखे गिलास में पानी भरकर दादाजी को थमा दिया। फिर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर वो तीनों लड़कियाँ या उनकी नानी माँ ने मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनसे कह दीजिए कि वो सब मुझसे दूरी बनाए रखें। इतना कहकर अरमान अपने लंबे लंबे कदमों से सीधा अपने कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि दादाजी का इस तरह से नानी माँ और उनकी बेटियों का फेवर करना अरमान को कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो गुस्से से पंचिंग बैग पर पंच करने लगा। उसके हर वार में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। अरमान खुद से ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाया, आखिरकार उस बूढ़ी औरत और उसकी तीनों बेटियों ने दादाजी पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो वो इस तरह से उनकी साइड लेने के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। वरना अरमान को कोई भी ऑर्डर देने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले दादाजी 100 बार सोचा करते थे, लेकिन आज दादाजी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए अपनापन था, उन लोगों के लिए प्यार था। ये बात अरमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने और तेजी से पंचिंग बैग पर वार करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में लगातार यही सवाल उमड़ रहा था, आखिरकार इन 2 सालों में इस घर में ऐसा क्या क्या हुआ था जो उसकी जिंदगी में इतने बदलाव आए हैं। उसे तो सब कुछ पहले जैसा ही परफेक्ट लगता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब इस घर में कुछ औरतें आ गई थीं और यही बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में आस्था ने एक से बढ़कर एक पकवान बनाए थे और शुभ मुहूर्त पर उसने अपने भाई को राखी बांधी। उस पल अविनाश की आंखें हल्की सी झलक उठी। उसने आस्था के माथे को चूम लिया और अगले ही पल खुश होकर बोला, तेरे गिफ्ट के रूप में मैंने सिंघानिया मैंशन के ठीक सामने वाला विला खरीदा है और वो विला मैंने अब तेरे नाम कर दिया है। ये सुनकर आस्था का दिल आश्चर्य से भर गया और उसने एक्साइटेड होते हुए अविनाश को थैंक यू कहा और उसे गले से लगा लिया। ये उसके भाई का रक्षाबंधन का पहला तोहफा था, इसलिए उसने बिना नानुकूर के इस तोहफे को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने दादाजी दिग्विजय सिंह से आशीर्वाद लिया और धीमी आवाज में चुपके से बोली,
मैं वादा करती हूँ दादाजी, आपकी प्रेरणा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी और ये लॉकेट पूरी तरह से संभाल कर रखूंगी जब तक कि इसकी असली हकदार को ना ढूंढ लूं। ये सुनते ही दिग्विजय सिंह जी हल्के से मुस्कुरा दिए और अगले ही पल दबी हुई आवाज में बोले, बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पल भर के जुनून में वो कार्य कर बैठा, लेकिन पिछले 22 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ पछता रहा हूँ और उस पछतावे की आग में जल रहा हूँ। काश उस वक्त मैं ऐसा जुनूनी कदम ना उठाता तो आज मेरा परिवार बिखरता नहीं और शायद तेरे माँ बाप भी जिंदा होते। ये सुनकर अगले ही पल आस्था की आंखें एक बार फिर भर आईं, मगर उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए दादाजी, वैसे भी हर किसी की जिंदगी में एक जुनून और मकसद होना जरूरी है, वरना जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, है ना। ये कहते हुए आस्था दादाजी के गले लग गई। दादाजी की आंखों में भी हल्की मुस्कान थी। वहीं अंश मुस्कुराकर अपनी माँ को टिमटिमाती हुई आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा था। आज आस्था बेहद प्यारी लग रही थी। खास मौकों पर वो हमेशा अपनी नानी माँ की दी हुई साड़ियाँ पहना करती थी, मगर आज दादाजी ने उसे कुछ साड़ियाँ दी। वो कोई आम साड़ियाँ नहीं थी, बल्कि आस्था की असली सगी माँ की थी। दिग्विजय सिंह ने नौकरों को बुलाकर कमरे से एक बॉक्स मंगवाया। आस्था की ओर देखते हुए एकदम से इमोशनल होकर बोले, मैं जानता हूँ जिन लोगों ने तुम्हें पाला है तुम उन्हें अपने माँ बाप मानती आई हो और बहुत ही तकलीफों के बीच तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है, मगर मैं चाहता हूँ कि आज से ये साड़ियाँ तुम्हारे पास रहें। ये साड़ियाँ तुम्हारी स्वर्गीय माँ की हैं।